તારીખ 25/12/1993 શ્રી મોક્ષમાર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 3 મૂળ કેસેટમાં ડિસ્ટર્બન્સ છે.
Thank you. जब समुद्र संज्ञान चारित्र से मोक्ष मार्ग है तो किस प्रकार से किस प्रकार के पुण्य से मोक्ष मार्ग है बताइए। सबके ज्ञान के पुण्य के परिणाम है, सबके चारित्र के पुण्य के परिणाम है, इसलिए किसी भी पुण्य भाव से सुभराव से किसी भी प्रकार का हो आप स्वभाव का विकल्प भी हो और ये सूक्ष्म विकल्प भी हो तो भी वो मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष का उपाय नहीं है। क्योंकि भगवान की भक्ति करेंगे तो शुभ भाव है, गुरु की भक्ति करेंगे शुभ भाव है, लेकिन आत्मा के चिंतन के परिणाम को तो वो भी शुभ भाव है। क्या विकल्प मार्ग स्थूल हो या सूक्ष्म हो ज्ञान से भिन्न है, भीतर में भी ज्ञान करना है तो ज्ञान से वो भिन्न है। जो लोग भीतर में भेद ज्ञान करते हैं अंतर में उनको दो एक साथ अपने परिणाम होने से आपस में कितना जाति भेद वाला है, यानी आपस में कितना विरुद्ध भाव वाला है तो अनुभव पद्धति से समझ में आता है, क्योंकि दोनों का अनुभव है। तो सूक्ष्म विकल्प आत्मा का सूक्ष्म विकल्प है, वो भी मैं नहीं और ज्ञान है तो मैं हूं, ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञान है तो मैं हूं, ऐसा विचार से वेद ज्ञान चलता है। इसलिए वेदज्ञानी जीव किसी भी प्रकार के विकल्प में भ्रमित नहीं होता कि ये ठीक है ये मेरा है, ऐसा भ्रम उसको नहीं होता, जो होता है उसको वेद ज्ञान नहीं होता। विकल्प को जानने वाला ज्ञान है और जैसा विकल्प है उस आकार ज्ञान विशेष हो जाता है, जैसे पीला रंग पीला दिखता है, काला काला दिखता है, तो ये ज्ञान में सदृशता आती है। लेकिन जिनकी दृष्टि पैनी होती है
जी,
इसलिए उसको प्रज्ञा क्षणी कहते हैं शास्त्र में, जिसका ज्ञान पहली पहली दृष्टि होती है, ज्ञान का दृष्टिकोण सूक्ष्म होता है, वो एक रूप दिखता है ज्ञान और भेद, उसमें भी ज्ञान अनुभव से वेदन से अलग पड़ता है और राग निरोध अलग पड़ता है, आत्मा संबंधित राग भी उसमें भेद पड़ता है। इसका एक दूसरा विकार है वेज्ञान में कि जो ज्ञान है वो निराकुल रूप है और राग का सूक्ष्म अंश भी आकुल का रूप है। सूक्ष्म राग भी इसमें आकुलता पैदा हुई ही है। अब देखिए बहुत कषाय मंद है, आत्मा के चिंतन रूप जो परिणाम है उसमें तो कषाय बहुत मंद है, मानसिक शांति भी अधिक होती है ना, उसमें आकुलता को कैसे समझे कि ज्ञान के साथ उसको मिलान करते हैं। भेद ज्ञान क्या कहता है भीतर में कि अपना ज्ञान जो अकषाय स्वरूप है, कषाय का अभाव स्वरूप है, उसका वेदन अनुभव के साथ लाभांश का मिलान करता है तब उनको पता चलता है कि कृष्णा होता है। वायु दृष्टि से मानसिक शास्त्री भीतर में वो आकुलता का स्वरूप है, जैसे जो कपड़ा है तो सफेद है
जी,
तो ऐसे एक कपड़ा रखेंगे तो हम सफेद कहेंगे, लेकिन साथ में रखेंगे तो मिलान करके कहेंगे ये ज्यादा सफेद है ये कम सफेद है। कम सफेद के मतलब क्या है, वो मैला है, इतना मैला है इसलिए कम सफेद कहते हैं, कपड़ा तो बोला सबसे सूट तो लोगों का सफेद ही सफेद है, तो वो मेला पर कब चले जाता है कि जो मेला नहीं है इसके साथ मिलान करे। तो ऐसे राग और ज्ञान के बीच में मिलान चलता है वेद ज्ञान के प्रयोग में। तो एक में आतुरता भाषित होती है कि निराकुर स्वरूप
दिशा भी उल्टी सुनती है, दिशा भी उल्टी सुनती है, एक अंतरंग दिशा है और बाह्य दिशा
है। दिशा में क्या होता है, आत्मा का लक्षण है आत्मा, संतोष स्वभाव भाषण हो गया, लक्षण है पूरा अपना आत्मा स्वरूप है, क्योंकि विकल्प नहीं छूटा है, निर्विकल्प अनुभव नहीं हुआ है। माँ जी
बैठे
कोई चिंतन का विषय अन्य पदार्थ नहीं है, आत्म पदार्थ है, क्योंकि लक्ष्य है आत्मा है। वहां जो सूक्ष्म भेद ज्ञान चलता है तो वो कैसे राग को भिन्न करता है या भिन्न हो जाता है, भिन्न पड़ता है कि राग में आतुरता है, ज्ञान निराकुर है और अपना स्वरूप अनंत ज्ञान से भरा हुआ दिखता है। राग ऊपर का छिलका दिखता है, क्या
ऊपर का छिलका,
ज्ञान का ज्ञान के वर्तमान वेदन से पूरा ज्ञान का बल है वो ग्रहण होता है। फिर
जी
वर्तमान ज्ञान वेदन से अनंत ज्ञान का बल है अंदर में, उसका अवलंबन आता है, आश्रय आता है, आधार मिलता है और पूरा आत्मा अनंत ज्ञान से लबालब रहा है ऐसा लगता है। जबकि उसी वक्त जो चिंतन का विकल्प का जो अंश है वो छिलका जैसा पतला सा दिखता है, जैसे कोई मूंगफली के वो बादाम के दाने में ऊपर छिलका होता है, अंदर में गर्म पूरा मीठा होता है बादाम का
शकरकंद,
ऐसा ज्ञान घन स्वभाव आनंद घन स्वभाव इसके साथ में आदर्श है तो ऊपर का एक छिलका जैसा लगता है, उतना अंतर भाषित होता है तो उसको भ्रम नहीं होता है। फिर भी को मंदिर आरोप में आत्मा के मंदिर विकल्प में भी भ्रम नहीं होता है कि ये अच्छा है, मुझे अच्छा भाव आता है, इसमें नहीं लगता है। तो उसकी जो नजर है उसने पहनी है और उसमें वो कभी गलत निर्णय नहीं आता, मन ये विकल्प आत्मा का मन करता, वो तो बेचारे को करना पड़ता है, इसका ज्ञान बलते होता है लक्ष्य में आत्मा आने से, तो उसको पीछे पीछे चलना पड़ता है, वो मन पड़ता है लेकिन वो थक जाएगा। क्या भले ही वो पीछे पीछे आता है लेकिन वो थक जाएगा, वो बंद हो जाएगा और ज्ञान है विकसित होकर के आनंद के साथ अनुभव में आएगा। तो आनंद के साथ विकल्प का शांत हो जाने से आनंद के साथ अनुभव में आता है तो वहां आत्मा प्रकट हो गया ऐसा कहने में आता है। समय दर्शन में आत्मा प्रकट हो गया, समय दर्शन उसका दूसरा नाम है, आत्मा ही प्रकट हो गया वहां, तो प्रगट रूप से आत्मा अनुभव में आया। इसलिए ये सूत्र है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य अस्थि से निरूपण करते हैं। इसका मतलब कि राग का एक कण भी मोक्ष मार्ग में नहीं है और राग का चारों तरफ ये सुक्रोध है, मलिन है, मेरे से विरुद्ध है और मेरे लिए कलंक है। क्या है? मेरा पवित्र स्वरूप, परिपूर्ण पवित्र स्वरूप है, अल्प भी थोड़ा सा भी दाग है तो दाग है, मैं उसको समर्थ किसी हालत में भी मैं समर्थ करने वाला
नहीं। उसमें अज्ञान है, इसलिए और भी कारण होता है। उसमें अज्ञान ज्ञान है ही नहीं।
ज्ञान है जो प्रकाश है, प्रकाश का पुंज है, कितना अंतर है? राम दिन जितना अंतर है, कितना अंतर स्वीर ज्ञान में मालूम पड़ता है, अनुभव में मालूम पड़ता है। इसी को धर्म कहते हैं। यही मोक्ष मार्ग है, यही धर्म है। इसलिए किसी भी पुण्य को, किसी भी लाभ को, किसी भी विकल्प को धर्म में सहायक साधक माना जाता नहीं है। धर्म तो है ही नहीं, किंतु धर्म के सहायक और साधन है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि तो न्याय होता है। न्याय किस तरह से टूटता है? कि साधन तो उसको कहे कि जो साधे के साथ जुड़ता हो, उसका कुछ साधे का के साथ संबंध रहता हो, तो उसको तो छूट जाता है, मिल जाता है। और विरुद्ध है, विरुद्ध परिणाम साधक और अविरुद्ध परिणाम साध्य, ये बात कभी बन सकती? तो न्याय विरुद्ध बात है, न्याय भी उस मान समझ में आने नहीं आएगी। इसलिए ऐसी मान्यता है कि नितांत भ्रम है और उसी को ही अज्ञान कहते हैं, उसी को ही मिथ्या श्रद्धा कहते हैं। फिर आचरण सही हो इसका तो विचार करने की भी वहां जगह नहीं मानते। इस सूत्र में जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा तीन बात कहा, इसलिए शास्त्र में उसको निश्चय रत्न त्रयी कहने में आया है। क्या? तीन रत्न, कर्तव्यता को भी बताया है, तो हो गया आत्मा जरूरी, जरूरी के भंडार में रत्न होते हैं, तिजोरे में रत्न हो जाएंगे। अपूर्व तीन रत्न की प्राप्ति होती है, एक साथ क्रम से नहीं होती है, कहने में क्रम होता है। एक समय में तीनों की उत्पत्ति है और उसको निश्चय रत्न करे जाने में आया है। ये तीन पर्याय होने पर भी वो व्यवहार रत्न त्रय नहीं है, निश्चय रत्न त्रय है। क्या? व्यवहार रत्न त्रय दूसरी बात है, निश्चय रत्न त्रय
दूसरी बात।
दूसरी बात जो स्वरूप के ध्यान के विकल्प है, निश्चय रत्न त्रय के साथ उसको व्यवहार नाम दिया जाता है या मिल सकता है। और आत्मज्ञान के स्वरूप ज्ञान के साथ जो विकल्प वाला ज्ञान होता है, और स्वरूप में लीनता के साथ भाव में कोई व्रताली का विकल्प होता है, स्वरूपता के वशात उसको व्यवहार चारित कहने में आता है। व्यवहार चारित्र के विषय में थोड़ा और स्पष्टीकरण देना आवश्यक है कि किसी भी पदार्थ का त्याग कर दे और ऐसा त्याग करे कि उसका विचार भी नहीं आए, तो गुरु प्राप्त हुआ है। त्याग करने के बाद इसका विचार आता है तो इसका मतलब तो मैंने रस कराया हुआ, लेकिन हम तो ग्रहण नहीं कर पाए, त्याग कर दिया है, इसलिए हम ग्रहण नहीं करेंगे। भले ही विचार आता है, लेकिन कोई किसी कोई ऐसे जीवी होते हैं कि जिसका मनोबल दृढ़ होता है, एक दफे त्याग कर दिया तो कर दिया, उसका विचार भी उसको दिया है। तो त्याग वो हराचार तो हुआ कि नहीं हुआ, कि नहीं हुआ समझ लाए। दरबार चारित्र के निश्चय चारित्र के पूर्वक बताया जाता गया है या कहा गया है ऐसी बात। तो कैसे कि जब स्वरूप स्थिरता बढ़ जाती है,
जो परमात्मा देंगे इन्हें सूर्य मंत्र बदलना
मार्ग में त्रिव्यवहार धर्म भगवान ने व्यवहार को सम्मत किया है, लेकिन किस व्यवहार को सम्मत किया है? तो जो व्यवहार परमार्थ में ले जाता है उसको
शास्त्र के मुख्य अपना तरफ Thank you.